इनविजिट को उसने लंका की रक्षा में नियुक्त कर दिया। इंद्रजीत कौन है? इंद्रजीत मेघनाथ कौन है? रावण का पुत्र है। तो अपने पुत्र को मेघनाथ को लंका की रक्षा में नियुक्त कर दिया और स्वयं आया किससे युद्ध करने के लिए? राम से युद्ध करने के लिए आया। निधाय इंद्र जितम लंका रक्षणार्थम महाद्युतिः स्वयं जगाम योद्धाय रामेण सह राक्षसः। महाबली राक्षस रावण समस्त शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित एक दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर श्री राम की ओर दौड़ा। दिव्यम चंदन मारोह सर्वशस्त्रार्थ संयुतम राममेवाभिद्रुद्राव राक्षसेन्द्रो महाबलः। उसने अपने सर्व के समान भयंकर बाणों से बहुत से बाणरों को मार डाला और सुग्रीव आदि युद्धपतियों को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। वानरान् बहुशो हत्वा बाण राशि विशोपमय पातियामास सुग्रीव प्रमुखान् युध नायकान्। फिर महापराक्रमी विभीषण को वहाँ गदा लिए खड़ा देख उसने उसकी ओर मैदानों की दी हुई महान शक्ति छोड़ी। रावण ने महान शक्ति छोड़ी किसके ऊपर? किसके ऊपर छोड़ी? विभीषण के ऊपर। विभीषण उसका भाई है तो उसको बहुत गुस्सा आया। विभीषण को देख करके बहुत गुस्सा आया। विभीषण के हाथ में क्या है? गदा ना? उसने महान शक्ति छोड़ी। गदापाणिम महासत्वम तत्र दृष्ट्वा विभीषणम उत्सर्जय महाशक्तिम मैं दत्ताम विभीषणे। उस शक्ति को विभीषण का नाश करने के लिए बढ़ती देख श्री राम ने इसे अभय दिया है। ये वध किए जाने योग्य नहीं है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी अपना प्रचंड धनुष लेकर विभीषण के आगे पर्वत के समान अचल होकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी विभीषण के आगे खड़े हो गए। क्यों? विभीषण की रक्षा होनी चाहिए। क्यों? कि श्री राम के शरण में आया। तो लक्ष्मण जी को चिंता हुई कि विभीषण ने राम की शरण ली है इसलिए विभीषण की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण जी ने क्या किया? विभीषण के आगे खड़े हो गए। तामापतंती मालोक विभीषण विघातिनी दत्ता भयोयम रामेण वधार हो नायमासुरः। इत्युक्त्वा लक्ष्मणो भीमं चापमादाय वीर्यवान विभीषणस्य पुरतः स्थितो कंप एवाचलः। उस शक्ति की सामर्थ्य अमोघ थी। अमोघ शक्ति मतलब बिना प्रहार किए वो वापस नहीं जाएगी। जिसके लिए छोड़ा गया है उस पर प्रहार करेगी शक्ति। अतः लक्ष्मण जी के शरीर में घुस गई वो शक्ति। लक्ष्मण जी के शरीर में घुस गई। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं अतः उनका उस माया शक्ति से क्या बिगड़ सकता था? लक्ष्मण जी का क्या बिगड़ सकता है? साशक्ति लक्ष्मण तनु विभेशामोघ शक्ति यावंत्य शक्तयो लोके मायाया संभवंती तासामाधार भूतस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः माया शक्त्या भवेत् किं वा शेषांशस्य हरेस्तनु। तथापि इस समय मनुष्य का भाव अंगीकार करने से उनका अनुकरण करते हुए वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मनुष्य भाव में लक्ष्मण जी किस भाव में है? मनुष्य भाव में है ना। तो मनुष्य के लिए जो है एक आवश्यक है, कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी जो है मनुष्य की लीला कर रहे हैं इसलिए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए रावण उन्हें अपने हाथों से उठाने में सफल ना हुआ। अब रावण ने क्या सोचा? उठा के ले जाऊँ लक्ष्मण जी को, अच्छा मौका है। लक्ष्मण जी गिर गए हैं तो ले जाकर के लंका में लक्ष्मण को जो है रखूं, है ना, राम के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा करूं लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए। लेकिन उठा नहीं पाया, लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाया। उससे बड़ा विस्मय हुआ। जो संपूर्ण जगत का भार उठाते हैं उनको एक सामान्य राक्षस कैसे उठा सकता है? हस्तैस्तोलय तुम सकतो नम भूमाते विस्मिताम सर्वस्य जगदासारम विराजम परमेश्वरम। जब हनुमान जी ने देखा कि रावण लक्ष्मण जी को ले जाना चाहता है तो उन्होंने अति क्रोध होकर उसकी छाती में वज्र के समान घूंसा मारा। हनुमान जी ने वो उठा नहीं पा रहा था और फिर भी कोशिश कर रहा था लक्ष्मण जी को उठा करके ले जाऊं, तो हनुमान जी आए तो छाती में एक घूंसा मारा रावण को। उस घूंसे के आघात से रावण घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। आजखान और रसी क्रुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना तेन मुष्टि प्रहारेण जानोभ्याम अपतन भुवि। और अपने मुख नेत्र और कानों से खून निकालने लगा। छाती में घूंसा मारा है ना, तो कहाँ से खून निकला रावण के? मुंह, नाक, आंख और कान, सात द्वार हैं। गले के ऊपर सात द्वारों से खून निकलने लगा रावण के। और घूमती हुई आंखों से रथ के पिछले भाग में बैठ गया, जाकर के रथ के पिछले भाग में बैठ गया। बड़ी मुश्किल से जा पाया रथ में, किसी प्रकार से बैठ गया। आश्यश्च नेत्र श्रवणैर उद्वमन रुधिरं बभूम विघूर्णमान नयनो रथोपस्थ उपाविशन। तब हनुमान जी रावण द्वारा आहत लक्ष्मण जी को अपनी भुजाओं पर उठाकर श्री राम के पास ले आए। हनुमान जी ले आए, क्यों? भक्त हैं, है ना, तो भक्त भगवान को उठा सकता है, हैं? लेकिन अभक्त है, भगवान को कैसे उठा सकता है? तो रावण लक्ष्मण जी को नहीं उठा सकता था, है ना, लेकिन हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठा करके राम के पास ले आए। अथ लक्ष्मण मादाय हनुमान रावणार्दितम आनयन राम सामीप्यम बाहुभ्याम परिगृहतम। हनुमान जी के लिए उनके भक्ति भाव के कारण वे जन्मा लक्ष्मण जी भारी से भारी होने पर भी बहुत हल्के हो गए हनुमान जी के लिए, है ना। हनुमता सुरत्वेन भक्त्या च परमेश्वरः लघुत्वं मगमत देवो गुरुणां गुरुरप्यजः। लक्ष्मण जी को साक्षात नारायण का अंश जानकर वो शक्ति भी उन्हें छोड़कर फिर रावण के रथ पर चली गई। शक्ति जो है लक्ष्मण जी के शरीर से निकल करके कहाँ चली गई? रावण के रथ में चली गई। इधर रावण को भी जब धीरे धीरे कुछ होश आया, रावण को होश आया, तो उसने अत्यंत क्रोध से अपना धनुष उठाया और श्री राम की ओर दौड़ा। उसे देख करके जगतपति श्री राम अति क्रोध होकर महाबली हनुमान जी के कंधे पर चढ़े। उनके पास तो रथ नहीं है, श्री राम के पास तो रथ नहीं है और रावण के पास रथ है, है ना, तो रावण की बराबरी करने के लिए राम ने भी अपना एक रथ तैयार किया। उनका रथ कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी कंधे पर चढ़े राम और रावण को रथ में बैठा देख करके उसकी ओर दौड़े। साशक्ति अपितम त्यक्त्वा ज्ञात्वा नारायणांशजम् रावणस्य रथम प्रागात् रावणोऽपि सनेस्ततः संज्ञामवाप्य जग्राहे बाणासनम् अथोरुसाम् राममेवाभिद्रुद्रावो दृष्ट्वा रामोऽपि तं क्रुधाम्। आरुह्य जगताम नाथो हनुमन्तं महाबलं रथस्थं रावणं दृष्ट्वा अभिदुद्राव राघवः। श्री राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा का ऐसा कठोर शब्द किया, प्रत्यंचा का शब्द यानी बिना बाण के धनुष की प्रत्यंचा ऐसे खींची और छोड़ दी, इससे इतना कठोर शब्द निकला, प्रत्यंचा से इतना कठोर शब्द निकला मानो वज्र को भी चूर्ण करने वाला। फिर अति गंभीर वाणी से राक्षसराज रावण से कहा, राम ने कहा, ज्या शब्दम करो तीव्रम वज्र निष्पेष निष्ठुरम रामो गंभीर वाचा राक्षसेन्द्रम वाच। अरे अधम राक्षस, जरा ठहर, मुझ सर्वत्र समदर्शी का ऐसा अपराध करके तू कहाँ जा सकता है? राम बोले, मैं सर्वत्र समदर्शी हूँ, मेरी समान दृष्टि है, लेकिन तू अपराध करता है तो मैं क्या करूँगा तुझे? दंड दूंगा, है ना। समदर्शी का ये मतलब नहीं है कोई अपराध करे तो उसको दंड ना दे, तो वैसे समदर्शी हैं श्री राम, लेकिन तूने मेरा अपराध किया है अब तू कहाँ जाएगा, तू ठहर। राक्षसाधमतिष्ठाद्य क्वगमिष्यसि मे पुरः कृत्वापराधमेवं मे सर्वत्र समदर्शिनः। अरे तनिक तू मेरे सामने खड़ा रहे, जिस बाण से मैंने जनस्थान में तेरे राक्षसों को मारा था आज उसी से तुझे भी मार डालूंगा। ये न बाणे न नेहता राक्षसास्ते जनालये तेन एवत्वाम हनिष्यामि तिष्ठादे मम गोचरे। श्री राम के वचन सुनकर रावण ने उन्हें वहन करने वाले हनुमान जी को बड़े तीखे बाण मारे। रावण ने किसको मारे बाण? हनुमान जी को बाणे मारे। श्री रामस्य वचा श्रुत्वा रावणो मारुतात्मजं वहन्तं राघवं शंखे सरस्तीक्ष्णे रताडयन्। किंतु तीक्ष्ण बाणों के लगने पर भी पवन पुत्र का तेज बढ़ता ही गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, हनुमान जी की शक्ति और बढ़ गई। रावण के बाणों के लगने से कुछ घटी नहीं सकती उनकी, और वे महान बानर बड़े जोर से गरजने लगे। हतस्यापि सरस्तीक्ष्णैर् वायुसूनो सुतेजसां व्यवर्धते पुनस्तेजो ननर्दे च महाकपिः। जब श्री राम ने हनुमान जी को छत विक्षत देखा, बहुत घायल हो गए हनुमान जी, तो बड़ा भयंकर क्रोध किया श्री राम ने। ततो दृष्ट्वा हनुमन्तं सव्रणं रघुसत्तमः क्रोधमाहारयामास कालरुद्र एवापरः। और अपने तीक्ष्ण बाणों से बड़ी फुर्ती के साथ रावण के घोड़े सहित रथ ध्वजा सारथी शस्त्र धनुष छत्र और पताका सब काट डाले। रावण का क्या क्या काट दिया, घोड़े मार डाले, रथ भी तोड़ दिया, ध्वजा काट दी, सारथी मार डाला, और धनुष काट दिया, छत्र काट दिया, पताका काट दिया, सब कुछ काट दिया रावण का। साश्वम रथम ध्वजम सोतम शत्रोगम धनुरंजसा छत्रम पताकाम तरसा चिच्छेद सित सायक। फिर इंद्र ने जैसे पर्वतों पर आक्रमण किया था, इंद्र ने क्या किया था, पहले पर्वतों पर आक्रमण किया था, वैसे ही उन्होंने एक वज्र तुल्य महाबाण से रावण को बेध डाला। पर्वतों पर आक्रमण किया था तो पर्वतों का आकार तो बहुत बड़ा है, इंद्र तो उतना बड़े नहीं, छोटे आकार वाले हैं, इन पर्वतों के क्या किए, पंख काट दिए। उसी प्रकार से श्री राम ने क्या किया, रावण को वज्र तुल्य महाबाण से बीन दिया। ततो महासरेणासु रावणम रघुसत्तमः दिव्याधे वज्रकल्पेन पाकारी रिव पर्वतम। श्री राम का बाण लगने से वो विचलित हो गया, उसे मूर्छा आ गई, उसके हाथ से धनुष छूट गया। उसकी ऐसी दशा देखकर श्री राम ने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका सूर्य के समान मुकुट काट डाला और कहा, तू मेरे बाण से पीड़ित है, अतः आज्ञा देता हूँ कि तू चला जा यहाँ से। राम ने क्या कहा, अभी मारा नहीं उसको, राम ने क्या कहा, वज्रतुल बाण से रावण का क्या हुआ, मूर्छा आ गई, हाथ से धनुष गिर गया, ऐसी दशा देख करके उसका मुकुट काटा, उसका सिर नहीं काटा, मुकुट काटा और क्या कहा, मैं आज्ञा देता हूं कि तू चला जा। तुम मेरे बाण से पीड़ित हो गया है, तू चला जा, अभी आज लंका में जाकर विश्राम कर, फिर कल मेरा पराक्रम देखना, आज जा विश्राम कर ले। राम बोले, अर्धचंद्रेण चेद तत्किरीटम रवि प्रभम अनुजानामि गच्छ त्वम् इदानीं बाण पीड़िता। प्रविश्य लंकाम आश्वास्य स्वापश्यसि बलम ममैं राम बाणेन संविद्धो हति दर्पोऽथ रावणः। श्री राम के बाण से विद्ध होने के कारण सारा दर्प चूर्ण हो जाने से रावण लज्जित और व्याकुल होकर लंका में प्रविष्ट हुआ। लज्जित हुआ, बड़ा व्याकुल हुआ और लंका में प्रविष्ट हुआ। इधर श्री राम भी लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देख मनुष्य भाव में शोक करने लगे। मनुष्य भाव में भगवान शोक कर रहे हैं, श्री राम मनुष्य लीला कर रहे हैं ना। और हनुमान जी से बोले, बस पहली तरह ही महा औषधि लाकर लक्ष्मण और बानरों को जीवित करो। राम ने किससे कहा? हनुमान जी से। पहले जैसे किया था वैसे अब दोबारा करो, लक्ष्मण को और बानरों को जीवित करो। रावण ने बहुत से बानर मार डाले थे, बानरों को जीवित करो, लक्ष्मण को जीवित करो। श्री राम के इस पर कहने पर महाकवि हनुमान जी बहुत अच्छा कहकर एक क्षण में ही महासागर को पार कर वायु वेग से चले। इसी समय रावण के गुप्तचरों ने रावण को बताया, अच्छा अवसर है। रावण के गुप्तचरों ने रावण को बताया कि अभी अच्छा अवसर है। मानुषत्वम उपाश्रित लीलियानु सुसोचहम तथा प्राह हनुमंतम वत्स जीवय लक्ष्मणम महौषधि समानीय पूर्वन्वानरानपि तथेति राघवेणोक्तो जगामासु महाकपिः। हनुमान वायुवेगेन क्षणात्तीर्त्वा महोदधिम् एतस्मिन्नन्तरे चारा रावणाय निवेदयन्। हे स्वामी, राम ने हनुमान को क्षीर समुद्र पर भेजा है और वो लक्ष्मण को जीवित करने के लिए महा औषधि लेने गया है। किसने कहा? गुप्तचरों ने। किससे कहा? रावण से कहा। रामेण प्रेषितो देव हनुमान क्षीर सागरम गतो ने तुम लक्ष्मणस्य जीवनार्थम महौषधि। उनके वचन सुनकर राक्षस राज अति चिंता मैं आतुर हुआ। उसी क्षण रात्रि में ही अकेला काल नेम के घर में गया। रावण बहुत चिंतित हो गया। किस बात से चिंतित हो गया? कि हाँ, लक्ष्मण जी को जीवित कर देगा हनुमान तो है, तो उसको बड़ी चिंता हुई। तो काल नेम के घर में गया रावण। श्रुत्वा तच्चार वचनम राजा चिंता परो भवन जगामे रात्रा विकाकी काल नेमी गृहम छलाम। रात्रि का समय चल रहा है। रावण को घर आया देख कालनेमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उसे पूजा करके उसके सामने खड़ा हुआ और अति भयभीत हो हाथ जोड़कर बोला, गृहागतम समालोक रावणम विस्मयान्वित कालनेमी रुवाचेदम प्रांजलिर पाम प्रांजलिर अंधभिः बलहा। अर्घ्यादिकं तथा कृत्वा रावणस्य अग्रतः स्थितः। राजन, आज किस कारण आना हुआ? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? किसने कहा? काल ने में। किससे कहा? रावण से कहा। तब रावण ने अति दुखित होकर काल ने में से कहा, किम करोमि राजेन्द्र किमागमन कारणम कालनेमी उवाचेदम रावणो दुःख पीड़िता। आज काल क्रम से मुझे भी ये कष्ट आया है, मेरी शक्ति से आहत होकर वीर लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा है। ममापि कालवशधा कष्टमेह तनुपस्थितम मया शक्त्या हतो वीरो लक्ष्मणा पतितो भवि। उसे जीवित करने के लिए हनुमान औषधि लेने गया है। हे महामते, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे उसके लाने में विघ्न आ जाए, क्योंकि निश्चित समय पर नहीं आए, अगर ला पाए तो फिर लक्ष्मण जीवित नहीं हो पाएंगे। तो रावण कहता है कि विघ्न डालो कि ठीक समय पर नहीं आ पाए। तम जीवय तुम माने तुम औषधि हनुमान गतः यथा तस्य भवेन्द्विघ्न तथा कुरु महामते। तुम माया से मुनि वेश बनाकर हनुमान को मोहित करो, मुनि का वेश बना करके, जिससे समय निकल जाए, ये कार्य करके फिर अपने घर लौटाना। हनुमान का समय किसी प्रकार से निकालो। माया मुनिवेशेण मोहयस्व महाकपिम कालातेयो यथा भूयात् तथा कृत्वे ही मंदिरे। रावण के वचन सुनकर कालनेमी ने उसे कहा, महाराज रावण, मेरी बात सुनिए और उस मेरी बात को समझकर धारण कीजिए। किसने कहा? कालनेमि ने कहा। रावणस्य वचः श्रुत्वा कालनेमि रुवाचतम् रावणेस्य वचो मेद्य शृणु धारय तत्त्वतः। मैं आपका प्रिय करूंगा, उसके लिए मैं अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। हे रावण, इसमें संदेह नहीं कि जो कुछ दंडकारण्य में मृग रूपधारी मारीच का हुआ था, वही दशा मेरी भी होगी। क्या होगा मेरा हाल? जैसा हाल क्या हो, किसका हुआ था? मारीच का, मृग रूप धारण करके आया था, है? तो वही दशा मेरी होगी। देखिए, आपके पुत्र पौत्र अनेकों सगे संबंधी राक्षस सब मारे गए हैं। प्रियं ते करवाणि एव न प्राणान्धारयाम्यहं मारीचस्य धारणे पुरा भून् मृगरूपिणः तथैव मे न संदेहो भविष्यति दशाननयं हदा पुत्राश्च पौत्राश्च बान्धवा राक्षसाश्च ते। इस प्रकार राक्षस वंश का नाश कराकर आपके जीवन, राज्य, सीता अथवा देह से भी क्या लाभ है कि तुम सीता को प्राप्त करोगे, राज्य को प्राप्त करोगे, जीवन प्राप्त करोगे, क्या फायदा है? पूरे राक्षस वंश का नाश करा करके भी अगर मान लो तुमको जीवन प्राप्त हो गया, सीता प्राप्त हो गई, तो क्या फायदा हुआ? पूरा वंश हाँ तुमने अपना नष्ट करवा दिया। क्या अच्छा है, सही है, है? कि सीता मिल जाए तुम्हें और राज्य मिल जाए पूरे राक्षसों को मरवा करके। घाते त्वासुरकुलं जीवितेनापि किं तव राजेन वासीतया वा किं देहेन जडात्मना। हे महाबाहु, आप श्री राम को सीता दीजिए और विभीषण को राज्य दीजिए। आप राम को क्या दीजिए? सीता दीजिए और विभीषण को क्या दीजिए? राज्य दीजिए, और मुनियों की तरह तपोवन को जाइए। सीता दीजिए राम को और राज्य दीजिए विभीषण को, और आप कहाँ जाइए? वन में, किस लिए? तपस्या करने के लिए जाइए। सीताम प्रियच्छ रामाय राज्यम देहि विभीषणे वनम याहि महाबाहो रम्यम मुनिगणाश्रयम। वहाँ प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके संध्या उपासना आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एकांत देश में सुखपूर्वक आसन से बैठिए। स्नात्वा प्रातः शुभजले कृत्वा संध्यादिका क्रिया तत एकांतमाश्रित सुखासने परिग्रह। और सब ओर से निस्संग हो, विषयों को छोड़ अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे अंतर्मुखी कीजिए। विसृज सर्वदा संगम इतरान विषयान बहि बहि प्रवृत्ताक्षगणम सने प्रत्यंग प्रवाहय। हे रावण, अपनी आत्मा को सदा प्रकृति से भिन्न समझिए। देह बुद्धि इंद्रियों से युक्त संपूर्ण चराचर जगत, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ दिखाई या सुनाई देता है, वो सब प्रकृति है, वही माया कहलाती है। वही सर्वदा संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण रूप है। सात्विक राजस और तामस प्रजा उत्पन्न करती है, और वही अपने गुणों से दिन रात सर्वव्यापक जीव को मोहित करके काम क्रोध आदि को उत्पन्न करती है। जिससे युक्त होकर जीवात्मा मायिक गुणों से मोहित होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है, और नित्य शुद्ध होता हुआ भी सदा बाहरी विषयों को देखने लगता है। जिस समय सद्गुरु का साक्षात्कार होता है और वे उसे निर्मल ज्ञान दृष्टि से जागृत करते हैं, उस समय वो विषयों से अपनी दृष्टि हटाकर अपने आप को ही स्पष्ट देखता है, और फिर ये देहधारी जीव जीवन मुक्त होकर प्राकृत गुणों से छूट जाता है। जीवन मुक्त सदा देही मुच्यते प्राकृत हरगुण तुम अप्येवम सदात्मानम विचार्य नितेन्द्रिया। हे रावण, आप संयत इंद्रिय होकर इसी प्रकार अपने वास्तविक आत्मस्वरूप का चिंतन कीजिए। इससे आप मुक्त हो जाएंगे, और यदि आप इस प्रकार ध्यान करने में समर्थ हैं तो भगवान का आश्रय लीजिए। हृदय कमल की कर्णिकाओं में मणि से जटित स्वर्ण सिंहासन पर जो जानकी सहित विराजमान है, हृदय में एक कमल है और उसमें सोने के सिंहासन में जानकी के साथ विराजमान है, जो वीरासन से बैठे हैं, जिनके नेत्र अति विशाल और वस्त्र विद्युत के समान तेजोमय है, और जो किरीट हार केयूर और कौस्तुभ मणि आदि आभूषणों से विभूषित हैं, नूपुर कटक और वनमाला आदि से जिनकी अपूर्व शोभा हो रही है, और लक्ष्मण जी अपने हाथों में दो धनुष लिए जिनकी सेवा में खड़े हैं, उन सबके हृदय में विराजमान अपने आत्मरूप श्री राम का इस प्रकार सर्वथा अत्यंत भक्तिपूर्वक ध्यान करने से आप मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। नूपुर कटक है रभांतम तथैव वनमालया लक्ष्मणे ने धनुर्द्वंद्व करेण परिसेवितम्। एवं ध्यात्वा सदात्मानं रामं सर्वहृदि स्थितं भक्त्या परमया युक्तो मुच्यते नात्र संशयः। नित्य अनन्य बुद्धि पूर्वक उनके भक्तों के मुख से उनके पवित्र चरित्र सुनिए, ऐसा करने से आपके पहले के महान पाप भी एक क्षण में इस प्रकार भस्म हो जाएंगे, जैसे अग्नि से रुई का ढेर भस्म हो जाता है। रुई का ढेर आग में कितनी जल्दी भस्म हो जाता है, उसी प्रकार आपके पाप जो है सब क्षण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे भक्तों के मुख से श्री राम के चरित्र का श्रवण करने से। सुनवे चरितम तस्य भक्तैर नित्यम अनन्यधि एवं चेत्कृत पूर्वाणी पापानी च महान्त्यपि क्षणादेव विनश्यन्ति यथाग्ने स्थूल राशयः। जो सर्वत्र परिपूर्ण है उन अद्वितीय श्री राम के साथ बैर छोड़कर प्रेम पूर्वक उन पुराण पुरुष की हृदय में भावना कर उनका सर्वदा भजन कीजिए। किसने कहा? काल ने मेरे किससे कहा? रावण से कहा। भजस्व रामं परिपूर्णमेकं विहाय वैरं निज भक्ति युक्तः हृदा सदा भावित भाव रूपं अनाम रूपं पुरुषं पुराणं। महादेव जी बोले, हे पार्वती, जैसे अग्नि से तपाया हुआ घी, जैसे अग्नि में तपाया हुआ घी जल डालने से छुन छुन आने लगता है। देखा, अग्नि में घी तपा हुआ हो और पानी डालो तो छुन छुन करेगा, वैसे ही काल नेमी के अमृत तुल्य वचन सुनकर रावण जल उठा, क्रोध से उसे नेत्र लाल हो गए। काल नेमी वचन श्रुत्वा रावण अमृत सन्निभम जल ज्वाल क्रोध ताम्राक्षा सर्पिरंधिमाग्निमान। वो कहने लगा, अरे मालूम होता है तू शत्रु से कुछ लेकर ही इस प्रकार राम के दास की भांति बातें बनाता है, तूने शत्रु से कुछ प्राप्त किया है, घूस प्राप्त किए? शत्रु से रिश्वत लेकर के तू मुझसे बताता है ये सब बात? रिश्वत याद रख, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तो दुष्ट को मैं अभी मार डालूंगा, राम के द्वारा तो तू बाद में मारा जाएगा, मैं तुझे अभी मार डालूंगा। निर्मितम दुरात्मानम मच्छासने परामुखम परे किंचन गृहीत्वा त्वं भासते राम किंकरा। तब कालनेमी ने रावण से कहा, देव क्रोध की क्या बात है, यदि आपको मेरा कथन अच्छा नहीं लगता तो मैं भी जाकर वही करता हूँ, आपको नहीं लगता अच्छा हाँ तो मैं क्या करूँगा, ठीक है जैसा कहते हो वैसे करूँगा। कालनेमी रुवाचेदम रावणम देव किम क्रुधा न रोचते मे वचनम यदि गत्वा करोमि तन्। क्या सुना? काली ने कहा, क्या आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती तो जैसा आप कहते वैसे ही करता हूँ, क्या किया जाए। ये कहकर महादैत्य कालनेमी रावण की प्रेरणा से हनुमान जी के कार्य में विघ्न करने के लिए वहां से तुरंत चल दिया। इत्युक्त्वा प्रेय शीघ्र कालनेमिर महासुरः नोदितो रावणे नैव हनुमन् विघ्न कारणा। उसने हिमालय की तराई में पहुंचकर उधर से जाते हुए वायुपुत्र हनुमान के मार्ग में एक तपोवन बनाया। वायु मार्ग से जा रहे हनुमान जी, रास्ते में उसने हिमालय की तराई में क्या बनाया, तपोवन बनाया है? और वहां वो दुष्ट स्वयं मुनि वेश बनाकर शिष्यों से घिर कर बैठ गया। जिस समय हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने वो सुंदर आश्रम देखा, अरे ये कैसा बहुत बढ़िया आश्रम लग रहा है। सगत्वा हेमवत पार्थम तपोवनम अकल्पयन तत्र शिष्य परिवृतो मुनिवेश धरा खला गच्छतो मार्ग मासाद्य वायुशूनोर महात्मनः ततो गत्वा ददर्शात है हनुमान आश्रमम शुभम। उसे देखकर श्रीमान पवन पुत्र हनुमान मनीमन सोचने लगे, मैंने पहले तो ये उत्तम मुनियों को नहीं देखा था, इतने बढ़िया मुनि बैठे यहाँ पर, इतने अच्छे मुनियों को मैंने पहले नहीं देखा। कितने बढ़िया मुनि हैं यहाँ पर। चिंतयामास मनसा श्रीमान पवन नंदनः पुराण दृष्ट में तन्मे मुनि मंडलम अनुत्तमम। क्या मैं मार्ग भूल गया, हनुमान जी क्या सोच रहे हैं, क्या मैं रास्ता भूल गया या मेरे चित्त में कोई भ्रम हो गया है, अथवा चलो इस आश्रम में चलकर सब मुनीश्वरों का दर्शन करूं और जल पीऊं, उसके बाद द्रोणाचल पर्वत पर जाऊंगा, ऐसा विचार कर वे उस आश्रम में गए। वो सब ओर से एक योजन विस्तार वाला आश्रम था, एक योजन मतलब 12 किलोमीटर, सब तरफ से 12 किलोमीटर का विस्तार था, बहुत बड़ा आश्रम था। उसमें सब और पके हुए फलों से जिनकी शाखाएं झुकी हुई हैं, ऐसे कदली साल खजूर कटहल आदि के वृक्ष लगे हुए थे। मार्गो विभ्रंति तो वामे ब्रह्मो वाचित्य संभव यदवास विश्वाश्रम पदम दृष्ट्वा मुनिम अशेषतः पीत्वा जलम ततो यामि द्रोणाचल मनोत्तमम इत्युक्ता प्रवेशात है सर्वतो योजनायतम आश्रमम कदली शाल है खर्जूरे पुनसादि मे समावृतम बक्कुफलैर नम्र साखे च पादपे। वो शुद्ध आश्रम वैर भाव से सर्वथा रहित था। देखो कैसी माया उस दुष्ट ने जो है, जबकि ईर्ष्या के कारण ही ये सब काम किया था, बैर भाव से बिल्कुल रहित अति सुरम में आश्रम में राक्षस कालनेमी इंद्रजाल विद्या का आश्रय कर शिव जी का पूजन कर रहा था। हनुमान जी ने उस महादैत्य को बड़े गौरव से नमस्कार करके कहा, हनुमान जी बहुत आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं उसको। वैरभाव निर्भुक्तम शुद्धम निर्मल लक्षणम तस्मिन् महाश्रमे रम्ये कालनेमी राक्षसः इंद्रयोगम समास्थाये चकारे शिव पूजनम हनुमान अभिवाद्या है गौरवेण महाश्रम। हे मुनीश्वर, मैं श्री राम का दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है और मैं श्री राम के एक महान कार्य से क्षीर सागर को जा रहा हूं। भगवान राम दूतो हम हनुमान नाम नामतः राम कार्यण महता क्षीराद्यम गंतुमुद्यतः। ब्रह्मन मुझे बहुत प्यास लगी है, कौन बोले, हनुमान, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं खूब जल पीना चाहता हूं, हे मुनीश्वर कृपया बतलाइए यहाँ जल कहाँ है। त्रिसामां बाधते ब्रह्मन् उदकं कुत्र विद्यते यथेच्छं पातुम् इच्छामि कथितां मे मुनीश्वर। हनुमान जी के वचन सुनकर कालनेमी ने कहा, तुम मेरे कमंडलू का जल पी सकते हो। तत्श्रुत्वा मारुतेर वाक्यम कालनेमिस्तम ब्रवीन् कमंडलुगतम तोयम मम त्वं पातुम् अर्हसि। यहाँ ये फल मौजूद हैं, इन्हें खाओ और फिर सुखपूर्वक यहाँ विश्राम कर कुछ सो लो, सो जाओ। फल मूल खाओ और विश्राम पूर्वक सो जाओ। ऐसी जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। भुंगचेमानि पक्वानि फलानि तदनन्तरं निवसस्व सुखेनात्र निद्रा में ही त्वरास्तु महा। मैं अपने तपोबल से भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात जानता हूं। क्या जानता हूं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कर्मों की बात जानता हूँ। उसको पता है कि मैं भी मारा जाऊंगा, तीनों कालों की बात मैं जानता हूं अपने तपोबल से। इस समय श्री राम के देखने से ही लक्ष्मण जी और समस्त वानर सचेत होकर उठ बैठे हैं। अब जाने की जरूरत नहीं है, राम की दृष्टि से ही सब बंदर और लक्ष्मण जी जीवित हो गए हैं, मुझे पता है। भूतम भव्यम भविष्यम च जानामि तपसा स्वयं उत्थितो लक्ष्मणः सर्वे वानर राम वीक्षिता। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, इस कमंडलू के जल से वो शांत नहीं हो सकती। हनुमान जी क्या बोले, तुम्हारे कमंडलू के पानी से मेरी प्यास शांत नहीं होगी, अतः मुझे जलाशय दिखला दीजिए, सरोवर। सरोवर में काफी पानी होता है ना, मेरी प्यास जो है ज्यादा है। कमंडल में कितना पानी है तुम्हारे। तत्ता हनुमान है कमंडलो जले नमे साम्यत्यधिका तृष्णा ततो दर्श में जलम। तब अच्छी बात है, ऐसा कहकर उसने एक माया कल्पित ब्रह्मचारी को आज्ञा दी। एक ब्रह्मचारी भी माया से बना दिया, अपनी माया से देखो कैसी माया है लोगों की। ब्रह्मचारी को आज्ञा दी, ब्रह्मचारी हनुमान जी को विस्तृत जलाशय दिखला दो। कैसी माया है देखो, माया से आश्रम ही बना दिया है। और ब्रह्मचारी कहता है कि बड़ा वाला जलाशय दिखा दो हनुमान जी को। माया विकल्पितम पटोदर से विस्तीर्णम वायु सोन और जलाशयम। फिर बोला देखो तुम आंखें मूंद कर जल पीना। कौन बोला, काल ने भी, किसने बोला, हनुमान जी से। देखो तुम आंखें मूंद कर जल पीना और फिर तुरंत मेरे पास चले आना, जाना नहीं। पानी पीकर भी कहां पर जाना, मेरे पास आना, मेरे पास चले आना। मैं तुम्हें एक मंत्र का उपदेश करूंगा जिससे तुम औषधि को देख सकोगे। अब पहले तो बता दिया कि जीवित हो गए हैं, हनुमान जी को शायद विश्वास नहीं हुआ, कहता औषधि को तुम देख पाओगे, मैं तुमको मंत्र दूंगा औषधि को देख लो। निमिले साक्षणी तोयम पीत्वा गच्छमांतिकम उपदेक्षामि ते मंत्रम ये निरक्षति चौषधि। तब बटु ने जो आज्ञा कह तुरंत थी जलाशय दिखला दिया, उसमें घुसकर हनुमान जी ने आंखें मूंद कर जल पीने लगे। उसने कहा था कि आंखें बंद करके पानी पीना, तो आंखें बंद करके ही पानी पीने लगे। हनुमान जी को पता नहीं है कि ये बदमाश उसकी आज्ञा के अनुसार आंखें बंद करके पानी पीने लगे। तथेति दर्शितम शीघ्रम वटुना सलिलाशयम प्रवेश हनुमान तोयम अपिबन भीलिते क्षण। इतने वहाँ एक महा मायाविनी मकरी आकर बड़ी शीघ्रता से हनुमान जी को निगलने लगी। वो भी बड़ी भयानक मकरी थी, मकरी मतलब मगरमच्छ की पत्नी। निकलने लगी। तदस्यागत्य मकरी महामाया महाकपिम अग्रसत्तम महावेगान मारुतिम घोर रूपिणी। हनुमान जी ने उस मकरी को अपने को निकलते देख अति क्रुद्ध हो अपने हाथों से उसका मुख फाड़ डाला, जिससे वो तत्काल मर गई, हाथ से फाड़ दिया। अब तो आंखें खोली होगी ना, अब तो आंखें खोल ली है, और उस मकरी को फाड़ डाला। तथोदर्श हनुमान ग्रसंती मकरी मृषाम धारयामा से हस्ताभ्याम वदनम सामारः। इसी समय आकाश में एक दिव्य रूप धारण स्त्री दिखलाई दी, उसका नाम धान्य माली था। स्त्री वो हनुमान जी से बोली, तथोदरक्षेत्र दृशे दिव्य रूप धरांगना धान माली थी विख्याता हनुमंतम अथाम ब्रवीण। हे कपीश्वर, आपकी कृपा से मैं आज सांप मुक्त हो गई। जिसको मकरी को मार डाला वही मकरी थी वो, दिव्य रूप धारण करके बोली कि मैं सांप मुक्त हो गई आपकी कृपा से। मैं पहले एक अप्सरा थी, किसी कारणवश मुझे एक मुनीश्वर ने सांप दिया था, इससे मैं क्या बन गई, मकरी बन गई। तत्प्रसादाद हम सापान विमुक्तास्मि कपीश्वर सत्ता हम मुनिना पूर्वम अप्सरा कारणांतरे। इस आश्रम में आपने जिस पुरुष को देखा है वो कालनेमी नामक महादैत्य है, इसे रावण ने आपके मार्ग में विघ्न डालने के लिए भेजा है। आश्रमेस्तु ते दृष्टा कालनेमिर्महासुरः रावणे प्रहितो मार्गे विघ्नं कर्तुं तवानघ। ये मुनि वेश धारण करने वाला कोई मुनि नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों की हत्या करने वाला है। इस दुष्ट को शीघ्र ही मारकर आप द्रोणाचल को जाइए। मुनिवेश धरो नासो मुनिर्विप्र विहिंस काम जय दुष्टम गच्छ शीघ्रम द्रोणाचरम अनुत्तमम। मैं आपके स्पर्श से निष्पाप होकर अब ब्रह्मलोक को जा रही हूँ। ऐसा कह के वो स्वर्ग लोक को चली गई और हनुमान जी भी आश्रम को चले। कहा था कि जाना कहीं नहीं, मेरे पास आ जाना। तो हनुमान जी अब जो है उसके पास आए। गच्छाम्य हम ब्रह्मलोकम् तद्स्पर्शानाथ कल्मषाम् इत्युक्त्वा साय स्वर्गम् हनुमान अप्यथाश्रमम्। हनुमान जी को आया देख कालनेमी ने कहा, हे मानस श्रेष्ठ, अब बहुत विलंब करने से तुम्हें क्या लाभ है, अब देर मत करो, मेरी आज्ञा के अनुसार जो मैं कहता हूँ वैसा काम करो। आगतम तम समालोक है काल ने मीर भाषत है किम विलंबे न महाता तब वानर सत्तम। लो मुझसे मंत्र ग्रहण करो और मुझे गुरु दक्षिणा दो। क्या लो मुझसे मंत्र ग्रहण करो और मुझे क्या दो, गुरु दक्षिणा दो। उसके इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने अपनी मुट्ठी कसकर बांधी। उस राक्षस से कहा, गृहाण मत्थो मंत्रांश तुम देवे गुरु दक्षिणाम इत्युक्तो। इत्युक्तो हनुमान मुष्टिम दृढ़ बद्ध्वा राक्षसम। हनुमान जी बोले, लो दक्षिणा तो ये लो। मंत्र बाद में देना, पहले दक्षिणा ले लो। लो दक्षिणा तो ये लो। ऐसा कहकर उसे एक मुक्का मारा। उसके लगते ही महादैत्य कालनेमी मुनि वेश त्याग कर नाना प्रकार की मायाओं से हनुमान जी के साथ लड़ने लगा। किंतु हनुमान जी तो महामायावी श्री राम के दूत और इन तुच्छ मायावी राक्षसों के शत्रु थे। गृहाण दक्षिणा में ताम इत्युक्त्वा जघान तम विसृज मुनिवेशम सा कालनेमिर महासुरः युधे मायु पुत्रेण नाना माया विधानतः महामायिक दूतो सौ हनुमान माये नाम रिपु। उन्होंने उसके सिर में एक मुक्का मारा जिससे मस्तक फट जाने के कारण वो तुरंत मर गया। तदनंतर वे क्षीर समुद्र पर पहुंचे और महापर्वत द्रोण को देखा, किंतु उन्हें वो औषधि ना मिली। अतः फौरन ही उस पर्वत को उखाड़ लिया और उसे वायु वेग से श्री राम के पास ले जाकर उनसे कहा, हे देवेश्वर, मैं इस महापर्वत को लाया हूँ, आप जो उचित समझें शीघ्र ही करें, इस कार्य में विलंब करना ठीक नहीं है। वाच हनुमान रामम आनीतोयम महागिरि यद्युक्तम गुरु देवेश है विलंबो नात्र युज्यते। हनुमान जी का ये वचन सुनकर श्री राम अति प्रसन्न हुए और उन प्रभु ने तुरंत उस पर्वत से औषधि लेकर सुसेन से महात्मा लक्ष्मण की चिकित्सा कराई। तब नींद से उठे हुए के समान लक्ष्मण जी ने सचेत होकर कहा, चिकित्सा कार्यामास लक्ष्मणाय महात्मने तथा सुप्तोत्थित इव बुद्ध्वा प्रोवाच लक्ष्मणः। अरे दुष्ट रावण, खड़ा रहे तू जाएगा कहाँ? लक्ष्मण जी को पता नहीं कि कितनी देर हो चुकी है और अभी कितना अभी मतलब घटना हो चुकी है। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अभी जो है मैं गिरा था, अभी मैं उठ गया। तो रावण कहते, रावण तू जाएगा कहाँ, मैं तुझे अभी मारे डालता हूँ। उन्हें इस प्रकार कहते देख श्री राम ने उनका सिर सूंघकर हनुमान जी से कहा, हे वत्स, हे महाकपे, आज तुम्हारी कृपा से ही मैं अपने भाई लक्ष्मण को जीवित देख रहा हूँ। तिष्ठे कुगंतासी हनुमिदानीं दशाननय इति प्रबंधम आलोक्य मूर्धनिवघ्राय राघवः मारुतिं प्राय वत्साद्य तं प्रसादान महाकपे रामयं प्रपश्यामि लक्ष्मणं भ्रातरं मम। हनुमान जी से इस प्रकार कहकर श्री राम ने सुग्रीव और अन्य वानरों के साथ विभीषण की सम्मति से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। तब युद्ध के लिए अत्यंत उत्सुक समस्त वानर पत्थर वृक्ष पर्वत शिखर लेकर लड़ने के लिए चले। इधर श्री राम के बाणों से विद्ध होकर रावण ऐसा व्याकुल हो रहा था जैसे सिंह से हाथी व्याकुल हो जाता है, शेर से हाथी व्याकुल हो जाए, गरुड़ से सर्प व्याकुल हो जाए। अतः राक्षस राज श्री राम से परास्त होकर लंकापुरी में गया और अपने राज सिंहासन पर बैठकर राक्षसों से इस प्रकार कहने लगा, पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी ने मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से बतलाई थी, किंतु संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे मार सके। अतः इसमें संदेह नहीं, साक्षात नारायण ही ने मनुष्य का अवतार लिया है और वे दशरथ पुत्र राम होकर मुझे मारने के लिए आए हैं। पूर्व काल में मुझे जो अनरण्य ने साप दिया था कि हे राक्षस राज, मेरे वंश में सनातन पुरुष भगवान अवतार लेंगे, उन्हीं के हाथ से तुम अपने पुत्र पौत्र और बांधवों के सहित मारे जाओगे। कौन कह रहा है? रावण, कि मुझे अनरण्य ने भी साप दिया था, राम के वंश में बहुत पहले हुए थे, कि मेरे वंश में भगवान अवतार लेंगे, उनके हाथों तुम मारे जाओगे। और ऐसा कहकर वे स्वर्ग को चले गए थे, सो उन्हीं राम ने मेरे लिए अवतार लिया है और ये मुझे अवश्य मारेंगे। हमारा भाई कुंभकर्ण तो बड़ा ही मूर्ख है, वो सदा ही सोता रहता है। अब मेरे ऊपर इतना संकट आया, वो सो रहा है पड़ा कुंभकर्ण, तुम उस महावीर को जगाकर मेरे पास लाओ। रावण के इस प्रकार कहने पर वे राक्षस तुरंत ही गए और प्रयत्न पूर्वक कुंभकर्ण को जगाकर रावण के पास लाए। वहां पहुंचने पर वो राजा को प्रणाम कर आसन पर बैठ गया। तब राजा रावण ने अत्यंत दीन वाणी से उस अपने भाई से कहा, कुंभकर्ण, इस समय हमारे ऊपर बड़ा संकट है, तुम सुनो। श्री राम ने हमारे बड़े बड़े वीर पुत्र पौत्र बंधु बांधव मार डाले हैं। भाई, इस समय मेरा मृत्यु का समय आ गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये महाबली राम सुग्रीव सहित दल बल के साथ समुद्र पार कर सब ओर से हमारी जड़ काट रहे हैं। हमारे जो मुख्य राक्षस थे वे सब युद्ध में बाणरों के हाथ से मारे गए, किंतु इस युद्ध में हमें बाणरों का क्षय होता कभी दिखाई नहीं देता है। तुम इनका नाश करो, मैंने इसीलिए तुम्हें जगाया है, अपने भाई के लिए दुष्कर कार्य को करो। रावण के दुख में वचन सुनकर कुंभकर्ण बड़े जोर से ठट्ठा मारकर हंसा और इस प्रकार कहने लगा, राजन आपने जब पहले सम्मति की थी उस समय मैंने जो कुछ कहा था आपके पाप का वो फल आज उपस्थित हो गया है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राम साक्षात परम ब्रह्म नारायण है और सीता जी योग माया है, किंतु आप तो समझाने पर भी नहीं समझते। एक दिन मैं रात्रि के समय वन में एक विशाल शिला पर बैठा था, इसी समय मैंने दिव्य मूर्ति साक्षात नारद मुनि को देखा। उन्हें देखकर मैंने कहा, हे महाभाग कहिए इस समय आप कहाँ जा रहे हैं। मेरे इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, मैं अभी तक देवताओं की एक गुप्त गोष्ठी में था। हाँ? प्राइवेट मीटिंग देवताओं की, नारद जी बताते हैं मैं था वहां, जो कुछ हुआ वो मैं तुम्हें ज्यों कहते हो सुनाता हूँ। तुम दोनों भाइयों से अत्यंत पीड़ित होकर समस्त देवता विष्णु भगवान के पास गए। उन देवेश्वर की अत्यंत भक्ति और एकाग्रता से स्तुति करके कहने लगे, हे देव इस रावण के आगे हमारी कुछ नहीं चलती, आप इस त्रिलोकी का कांटा शीघ्र ही खत्म कीजिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से निश्चित की है, अतः आप मनुष्य होकर इस रावण रूप कांटे को नष्ट कीजिए। किसने कहा? देवताओं ने कहा। तब भगवान विष्णु ने बहुत अच्छा कहा, अब वे रघुकुल में अवतीर्ण होकर राम नाम से विख्यात हुए हैं, वे तुम सबको मारेंगे। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। बात नहीं कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? बिल्कुल शांत, जिनको बातें करना है बाहर जाइए। कौन बातें कर रहा है? बार बार समझाया जा रहा है कि बातें ना करिए। हरि बोल। कौन बातें कर रहा है? जिनको बातें करना है, बाहर बहुत जगह है बातें करने के लिए। हाँ, क्या सुना? नारद मुनि चले गए, अतः आप राम को सनातन पर ब्रह्म ही जानिए और बैर छोड़कर उन भगवान का भजन कीजिए। श्री राम भक्ति भाव से भजन करने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। भजस्वाध्याय माया मानस विग्रहम भजतो भक्ति भावे न प्रसिद्धति रघुत्तम। भक्ति ही ज्ञान की जननी है, भक्ति ही ज्ञान की जननी है और मोक्ष को देने वाली है। भक्तिहीन पुरुष जो कुछ करता है वो सब ना किए के बराबर है। भक्तिर जनित्री ज्ञानस्य भक्तिर मोक्षाय प्रदायिनी भक्तिहीनेन यत्किंचन कृतम सर्वम असत्तमम। भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं और वे सभी अपने स्वरूप के अनुसार लीला करने वाले थे, किंतु ये ज्ञानमय राम अवतार वैसे 1000 अवतारों के समान है। अवतारासु भावो विष्णु लीलानुकारिणः तेषां सहस्र सदृशो रामो ज्ञानमय शिवः। जो लोग रात दिन मन और वचन से श्री राम का भली भांति भजन करते हैं वे बिना प्रयास ही संसार को पार कर श्री हरि के परम धाम को जाते हैं। रामम भजन्ति निपुणा मनसा वचसान सम अनायासेन संसारम तीर्थ्वा यान्ति हरे पदम। जो शुद्ध चित्त महानुभाव इस भूमंडल में निरंतर राम का ही ध्यान करते और उन्हीं के चरित्र पढ़ते हैं वही सांसारिक विषय रूप महान पास से छूटकर श्री सीतापति के अनंत सुखमय चरण कमलों को प्राप्त होते हैं। ये राम में सततम भविष्यत्व शुद्ध सत्वा ध्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति संतः मुक्तास्त एव भवभोग महाहिपाशे सीतापते पदमनंत सुखम प्रयान्ति। तो आगे की कथा तो बहुत लंबी है, तो यहीं पर ही हम विश्राम करेंगे। बहुत सुंदर कथा है, कुंभकर्ण ने रावण को समझाया कि बैर त्याग करके भजन करो। श्री राम कथा महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।